نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفلف ومضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الصبي وبارك وسلم أما بعد لفظ ہے حسرت، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریگریشنز، پچھتاوا. ایک بہت ہی عجیب غریب کیفیت کا نام ہے پچھتانا. کس طرح یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کو یہ طاقت ہو اور سمجھ بھی ہو کر سکتا ہو کوئی کام، لیکن وہ نہ کرے، اس کام کو چھوڑ دے کسی بھی وجہ سے، اور جب وقت گزر جائے اور وہ اس قابل ہو کہ وہ اس کام کو نہیں کر سکے گا اور بعد میں اس کے فائدے محسوس ہو انسان کو اور اس کی قیمت محسوس ہو، اس وقت جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے اس کا نام ہے پچھتاوا، جس کو حسرت کہا جاتا ہے. اس کا اثرات زبان سے بیان کرنا بڑا مشکل ہے، جو اس کیفیت سے گزرا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ کس قدر اس کو افسوس اور اس معاملے پہ پچھتاوے پر تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر دنیا کے حساب سے آپ سوچیں کہ کسی آدمی نے کوئی دکان کا سودا کیا یا کرنا تھا، وہ کہتا چھوڑو یار، کسی وجہ سے ویسی غفلہ سستی اس کو چھوڑ دیا. پتہ چلا بعد میں دکان بک گئی اور وہ جو دکان تھی بہت ہی بڑی قیمت پہ بکی، تو پھر وہ پچھتاتا ہے کہ یار یہ بڑا غلطی میں نے کی، میں لے لیتا، مجھے لے لینا چاہیے تھا. یہ کیفیت ہے جس کا نام ریگریشن اور پچھتاوا ہے. دنیا کی حد تک تو ہے معاملہ ایسا کہ اگر ایسے حالات انسان کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، تو چانسز تو ہیں انسان کے، اس کی کسی نہ کسی طریقے سے نعم البدل مل جاتا ہے یا اس کو آدمی کوئی کمپنسیٹ کر لیتا ہے. تو چلو ابھی اس نے پچھتا پچھتو کہ پھر کوئی اور دکان نظر آ گئی یا کوئی اور چیز نظر آ گئی تو اس کو حاصل کر لے. لیکن آخرت کے اعتبار سے دوستو، پھر جو کام ہم نے یہاں چھوڑ دیا آخرت میں پھر اس کا چانس نہیں ہوتا، بس پھر وہاں تو حسرت ہی حسرت انسان کے پاس ہوگی. جیسے قرآن میں بہت جگہ مضمون آیا ہے کہ وہاں پر لوگ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، جسم کو کاٹیں گے، ہائے یہ کیا ہوا ہمارے سے، ہم نے کیوں وقت ضائع کیا. یہ حدیث، یہ قرآن حکیم، یہ اللہ والوں کی باتیں، بزرگان دین کی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، یہ کس سے کہانی تو نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں کہ کل یہ کیفیت ہماری نہ ہو کہ ہم حسرت کے انداز سے اٹھیں اور حسرت ہی ہمارے ساتھ ہو. ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ اعمال، وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ باعث حسرت ہوگی ہمارے لیے، وہ آج پوری کر لیں. وقت اللہ نے دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، چانس دیا ہے، اس کو ضائع نہ کرے آدمی، کیونکہ یہ جو پچھتاوا ہوگا یہ بہت بڑا ایک عذاب کی شکل بن جائے گا انسان کے لیے، بہت بڑی عذاب کی شکل بن جائے گا. اس دفعہ تم بیٹھ کے بڑے آسانی کے ساتھ سو سو تسبیحیں، دس دس تسبیحیں، ایک ہی دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا، الحمدللہ بھی کہہ دیا، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا سبحان اللہ کہنے کی بھی طاقت ختم کر لی جائے گی، اللہ کا نام بھی نہیں لے سکیں گے بالکل بھی، اعمال کی جو گٹھری باندھ دی جائے گی انسان کی. तो अल्लाह ताला हमें इस पछतावे से बचाए, इस हसरत से बचाए। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। मौत हमारे पीछे भाग रही है, ज़िंदगी के जो लवाजमात हैं वो कशिश हैं जो हमें खालिफ कफरत में डाले रखते हैं, और हम इसका कदम ही नहीं उठाते, सोचते भी नहीं कि अल्लाह क्या मज़मून बयान फरमा रहे हैं, अहादीस में इसको क्यों बयान किया गया, क्यों हम अपनी इस चीज़ से हटें। जब ऐसे ऐसे मैसेज ऐसी चीज़ें हम तक पहुँच जाएँ तो यकीनन हमें होशियार होना चाहिए कि भाई हमें कल पछतावे वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हसन रदी अल्लाह ताला ने एक हदीस है जिसका मफहूम में से है कि वह फरमाते हैं कि मौत के वक्त इंसान जब जाता है तो सबसे बड़ी अज़ियत उसके साथ ही होती है कि वह हसरतों के साथ जाता है। जब मौत के वक्त ख़त्म उसको हकीकत नज़र आती है तो फिर उसके सामने हसरतें होती हैं, ओहो काश मैंने नमाज सही पढ़ी होती, या काश मैं जमात में गया होता, मैंने कोई चिल्ला लगाया होता, मैं किसी अल्लाह वाले के साथ बैठा होता, मैंने कोई जिक्र किया होता, या मैं बैठे बातें करता रहा, सोता रहा, अजान का टाइम होता रहा, मैं नमाज पढ़ जाता रहा, जाने की जमातों को छोड़ता रहा। वहाँ तो एक एक चीज़ उसकी वैल्यू जब कीमत हमें नज़र आएगी ना तो उस वक्त भी चीखें निकलेंगी इंसान की। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ नमाज जमात के साथ आने में हमें क्या कुछ मिल जाता है। इस जिक्र की जो मजलिस है, अभी एक ही हदीस मौलाना साहब ने सुनाई है, क्या इंसान को मिल जाता है इस जिक्र में, इसको छोड़ के कितना बड़ा नुकसान होता है। तो इसकी हकीकत तो अभी हमारे सामने वही है जो हदीस तक हम तक पहुँची हैं, लेकिन वो वक्त वो होगा, वो सुनने का नहीं है, वो तो आँखों से मुशाहदे का वक्त होता है, मुशाहदे का वक्त होता है। जिस वक्त किताब बंद हो जाती है, रूह निकल जाती है, होते हम यही हैं, बस एक ट्रांसलेशन हो जाता है इंसान का, तब्दीली आती है उसमें। यह है कि फिर हम आँखों से देखने लगते हैं उनके इनामात, वो जन्नतें, वो बाहरें, वो चीज़ें, वो किस मतलब है कि तुमने एक दफ़ा मेरा नाम ही ले लिया था तो ये चीज़ मिलनी थी, पता है फिर क्या हुआ। अगर एक मेरी मजलिस में बैठ जाता जिक्र में जाके, देख वो तेरा मुकाम होता, सोचिए तो ये काम कर लेता तो ये तुझे मिलना था। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि भाई हसरत वाली दुनिया हो जाएगी वो भी इंसान के लिए, हसरत में पड़ जाएगा इंसान, हसरतें हसरत होंगी, और ख़ास तौर पर वहाँ जाने के बाद तो भी एक अजाब बन जाता है आदमी के लिए, यार हम ये काम कर ही लेते तो अच्छा था, बहुत बुरा हुआ। एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूँ माशाल्लाह इस मजलिस के हिसाब से, हाँ इसके सुनने के बाद फिर इस पर तवज्जो फरमाएं कि देखें अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हदीस के एक मफहूम है। हसरत तो समझ गए हम कि कितनी बुरी चीज़ है, इस हसरत से बचना चाहिए। तो उसमें एक अजीब क्लू दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर, फरमाते हैं कि लोग हसरतों में होंगे हर मैदान के अंदर, यानी मौत से शुरू हो जाएगी हसरत, जब कलकला हो जाता ना इंसान के पास कि वहीं से हसरत शुरू हो जाती है, हसरत के अजाब समझ में उस पर आने शुरू हो जाते हैं, जब कब्र में जाते हैं फिर एक और अजाब आ जाता है हसरत का अमाल, फिर कब्र के बाद फिर इंतज़ार जो शुरू होता है क़यामत का, सूर का, उसमें एक हसरत के साथ उठते हैं, हसरत के साथ मैदान अशम जाते हैं, हसरत के साथ एक अजीब कैफी के साथ इंसान की ज़िंदगी हसरत के साथ होती है। तो फरमाया सिर्फ एक कौम और एक मर्द ऐसे होंगे जो हसरत से महफूज रहेंगे, या रसूल वो कौन लोग होंगे, फरमाया वो मर्द वो औरतें जो दुनिया में मेरे अल्लाह का जिक्र करते थे। कितनी खूबसूरती से होता है, कितना बड़ा अल्लाह ने जिक्र को इनाम दिया है, यानी गारंटी दे दी कि जो अल्लाह का जिक्र करेगा वो हसरत में होगा ही नहीं, वो असल में हो गई नहीं। क्या कैफियत होती है इसकी अल्लाह का जिक्र करने वालों की। एक और हदीस इसके साथ, एक और हदीस आपको सुनाता हूँ क्या होती है, क्यों नहीं हसरत होती है, अल्लाह का जिक्र क्या चीज़ है। फरमाया जिस दिन इंसान मरता है तो जिक्र का नूर उसके साथ होता है, और जिस वक्त लोग उसको नला दुला के कब्र में ले जाते हैं तो कब्र में अल्लाह का जिक्र का नूर मौजूद होता है, नूर का लफ्ज़ है। फरमाया नूर गिरे रखता है कब्र के अंदर, और जिस वक्त वो कब्र से उठाया जाता है तो उस वक्त भी वो नूर उसके साथ होता है, बल्कि वो नूर तो ऐसा होता है कि उसका चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहा होता है कब्र से निकलने के बाद। ये सारी हदीस कहते हैं जिस वक्त को लेके जाते हैं हश्र के मैदान में पहुंचता है वो इंसान, तो वहाँ भी उसके साथ जिक्र का नूर होता है, उस नूर की कैफियत। तो एक और हदीस में आई है कि वो जो जिक्र करने वाली जमात होंगी या लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए तो एक मिंबर बिछाया जाएगा, एक अजीब व गरीब मेंबर होगा, स्टेज होगी जिस पे वो जमात को बिठाया जाएगा, उनके चेहरे चौदहवीं की रात की तरह चमक रहे होंगे। बेतहाशा लोग कहेंगे, अल्लाह ये हम नबी हैं, ये शोदा हैं, ये कौन लोग हैं? आवाज आएगी, ना नबी हैं ना शोदा हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जो मस्जिदों में बैठ के मेरा जिक्र किया करते हैं। बताएं कितनी बड़ी चीज़ है। आज क्या है वही बात, आज इस हसरत को हम मिटा सकते हैं अगर हिम्मत करें। अब जिक्र से मतलब ये नहीं कि ये इनाम दिया जा रहा है कि बस आप बैठ के हमें थोड़ा मौका मिलेगा तो एक तस्बीह कर ली, या कभी भाई तस्बीह फातिमी कर ली, या कभी एक दफ़ा जिक्र में आके बैठ गए। नहीं, इसका स्टैंडर्ड अल्लाह पाक ने दी है। जिन ज़ाकिरीन मर्द और औरतों की बात की जा रही है ना, तो वो कौन से लोग होंगे? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। याद रख लें, सब ये नहीं कि कभी याद कर लिया जिक्र, कभी छोड़ दिया, कभी हाँ आज हो गया कल हो गया। नहीं, स्टैंडर्ड ये बताया कि जो ऐसा ज़ाकिर होगा मर्द कि उठते भी, बैठते भी, चलते भी, सोते भी, हर वक्त अल्लाह का जिक्र उसके ज़बान पर जारी होगा, तो उसके लिए इनाम दिया गया। कि उसके लिए तो हसरत है ही नहीं, सारी दुनिया हसरत में डूबी होगी, उसके लिए कोई हसरत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आज हम यहाँ बैठे हैं। तो अपने आप को हम कोशिश करें कि कल आने वाला वक्त जो है हमारा हसरतों को ना हो, एक ही अमल को हम पकड़ लें अल्लाह के जिक्र, इस अमल को अगर हम पकड़ लें मजबूती के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हमारे साथ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। और इसका तरीका तो ये है, बुज़ुर्गान दीन ने जैसे नक्शबंदी तरीके में तो बहुत ही आसान कर दिया ये सिचुएशन को। जब कुरान ने जो बताया कि सोते हुए जिक्र हो, चलते हुए जिक्र हो, फिरते हुए जिक्र हो, तो ये तो बहुत आसान कर दिया है कि कल्ब जारी हो जाए। जब इंसान का कल्ब जारी हो जाता है किसी नक्शबंदी शेख से, एक आदमी जिक्र सीख ले तो वो कल्ब पर जिक्र देते हैं। ये जिक्र का एक तरीका है, बड़ा आला दर्जे का तरीका है। जैसे हमने फजाइल अमाल में पढ़ते हैं ना, शेख ने लिखा है कि एक तो जिक्र क्या जो हम जुबान से करते हैं, और एक जिक्र जो है दिल से किया जाता है, क्या कहते हैं? कल्बी जिक्र। ये जिक्र 70 गुना अफजल है, हजरत शेख फरमाते हैं फजाइल अमाल में 70 गुना ये जिक्र अफजल है। लेकिन इसको जाके इसे अल्लाह वाले से सीखना पड़ता है, किसी शेख के पास जाना पड़ता है, वो कहें जी हमें अल्लाह का जिक्र सिखा दें। तो ये जिक्र सीख लिया, फिर इस पर आ जाएगा लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन, उस मुकाम पर पहुँच जाता है आदमी, क्योंकि दिल जारी हो जाता है उसका, दिल अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर देता है। अब वो काम भी कर रहा है, तबलीग भी कर रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, घर में बैठा है, दुकान भी कर रहा है। हमारा दीन तो रोकता नहीं किसी चीज़ को जिक्र करने का, मतलब ये तो नहीं आप सब काम छोड़ दें, ये तो नहीं मतलब। मतलब ये कि जब दिल आपका ज़ाकिर है तो फिर आप गाफिल नहीं हैं, आप इसकी तरफ तवज्जो ना करें, आपके हाथ काम की तरफ होंगे, दिल यार की तरफ होगा। वो तो गया, आपके हाथ से निकल गया, आप उसको रोकेंगे भी तो नहीं रुकेगा, वो अपनी ओरिजिन की तरफ चला गया। उसको पता है कि मैं बना इसलिए था अपने रब को पहचानो, आपके रब को पहचानो। तखलीक थी अल्लाह की, खालिक है, जो तखलीक है वो अपने खालिक को नहीं भूल सकती। एक इंसानी है जो अपने रब को भूल जाता है। मेरे भाइयों, उस पर कुछ सोचें जरा, इसलिए बात मैंने की है कि हम कुछ सोचें। तखीर नहीं मैंने की या कोई वाज नहीं किया, बल्कि एक अपने ज़मीर को, मैंने अपनी ज़मीर को झंझोड़ा है कि हम कल उस ग्रोह के साथ ना हो कि जो पछता रहा हो। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ अगर हम कर लें, अल्लाह के जिक्र को सीखें, अल्लाह के जिक्र की पाबंदी कर लें, बाकी काम भी चलते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी आ रही है हमारी तरफ कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली ज़िंदगी को बहुत आसान कर देंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको।